معزز سامعین حضرات، سپر کیسٹ انڈسٹریز لمیٹڈ اور گلشن کمار کی جانب سے پہلی بار حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات تسلیم عارف اپنی آواز میں پیش کر رہے ہیں۔ سامعین حضرات، ہندوستان کا ایک بہت مشہور شہر ہے جس کا نام ہے پانی پت، اور اسی پانی پت میں حضرت شرف الدین بو علی شاہ قلندر کا مزار پاک ہے۔ آپ بہت ہی بامرتبہ بزرگ ہیں اور ان کی شان میں شاعر کی کیا مجال کے کچھ لکھ سکے، لیکن پھر بھی ہندوستان کے عظیم تر شاعر محترم حاجی شوق وزیر گنجوی صاحب نے کوشش کی ہے کہ آپ کی سوانح حیات لکھ سکیں۔ لیجئے، شوق وزیر گنجوی نے جو کچھ لکھا ہے وہ تسلیم عارف آلوین براؤن کے میوزک ڈائریکشن میں پیش کر رہے ہیں۔ سماعت کیجئے گا سوانح حیات بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ، اور اس میں آپ حضرت بو علی شاہ قلندر کی حالات زندگی سماعت فرمائیں گے۔ لیجئے چند قطعات اور اس کے بعد میں واقعہ شروع کر رہا ہوں۔ جدھر دیکھو ادھر منظر ہے رب کی شان قدرت کا، سبھی کو مل رہا ہے فیض بے شک اس کی رحمت کا۔ جو پہنچے اس کی بزم خاص تک وہ نہیں رہتا، بتائے راز پھر کیسے کوئی اس کی حقیقت کا۔
پہچانتا ہے جو کوئی شان قلندری، اس کو خراج دیتی ہے موجے سمندری۔ سوغات عشق پائی یہاں جس فقیر نے، اس کی نظر میں کچھ نہیں تاجے سکندری۔
لیکن جو کھو دیتا ہے خود کو شوق عشق مصطفی میں، نظر آتے ہیں اس کو مصطفیٰ ساری خدائی میں، نہیں تخت سلیمانی میں وہ تاثیر برکت کی کہ جو تاثیر ہے سرکار کی ٹوٹی چٹائی میں۔ اسی لیے تو کہنا ہے،
لو دیکھو پانی پت کا میں تمہیں دولہا دکھاتا ہوں،
لو دیکھو پانی پت کا میں تمہیں دولہا دکھاتا ہوں۔
قلندر بو علی شاہ کی سوانح میں سناتا ہوں،
ہوں
سامعین پہلا بند ملاحظہ فرمائیے گا. آپ کا مزار آپ پہلے ہی سن چکے ہیں کہ پانی پت میں ہے, لیکن پانی پت دلی سے نیشنل ہائی وے راشٹریہ راج مارگ نمبر ایک نیشنل ہائی وے نمبر ایک پر دلی سے صرف 90 کلومیٹر دور اتر میں پنجاب کی طرف واقع ہے, اور وہاں ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک ہے. آئیے آپ کی شان مبارکہ یعنی سوانح حیات ہم یہاں سے سماعت فرمائیں.
خدا پاک جس بندے پہ اپنی مہر کرتا ہے وہی بندہ مراتب کی بلندی سے گزرتا ہے. عقیدت جس کو ہوتی ہے نبی کی آل اطہر سے مرادیں اپنی پاتا ہے وہ دربار پیغمبر سے. خدا دیتا ہے جس کو عشق سالار پیغمبر کا ستارہ جگمگاتا ہے صدا اس کے مقدر کا. سنو اب ابو علی شاہ نے مراتب کیسے پائے ہیں, وہ پانی پت کے میدان میں کہاں سے کیسے آئے ہیں. اے والد ان کے فخر الدین کچھ ان کا بھی قصہ ہے. تواریخ قلندر ابو علی شاہ میں یہ لکھا ہے. عراق ان کا وطن تھا وہ بہادر نیک انسان تھے. وہ تھے درویش بھی عالم بھی تھے سچے مسلمان تھے. ابھی نو عمر تھے عالم تھا ان پر نو جوانی کا. کیا کرتے تھے وہ برتاؤ سب سے مہربانی کا. قلندر لوگوں کا کچھ قافلہ آیا وہیں ٹھہرا. توازے خوب کی اس کی تعلق ہو گیا گہرا. چلا جب قافلہ ان سے بچھڑ کر تو ملال آیا. محبت میں وطن کو چھوڑ دینے کا خیال آیا.
حضرت فخر الدین عراقی جو عراق کے رہنے والے تھے اور بہت ہی بہادر انسان تھے, درویش تھے, عالم تھے, ابھی نو عمر ہی تھے, ان پہ جوانی تھی. ایک دن قلندر لوگوں کا کچھ قافلہ آیا اور وہیں ٹھہرا. آپ نے ان کی خوب توازے کی اور پھر ان سے گہرا تعلق ہو گیا, لیکن جب وہ قافلہ رخصت ہوا تو آپ کو بڑا ملال ہوا, اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے سنیے.
بچھڑنا قافلے سے जब न फखरुद्दीन को भाया तो फिर उस काफले के साथ खुद भी कूच फरमाया। वो चलकर काफला हमदान से मुल्तान में पहुंचा। जिकरिया शेख मुल्तानी के लंगर पर वो जा ठहरा। बहाउद्दीन जिकरिया शेख मुल्तानी के लंगर पर हजारों लोग खाना खाते थे बाहर से आ आकर। मोहब्बत से सभी को शेख मुल्तानी खिलाते थे। गरीबों बेकसों के हर घड़ी वो काम आते थे। जो फखरुद्दीन को उस काफले में आपने देखा तो सोचा इस जवां को इश्क है पांव में कलंदर का। था फखरुद्दीन के कल्बो नजर में नूरे इरफानी। बहाउद्दीन मुल्तानी ने हालत उनकी पहचानी। ये सोचा काफले के साथ ये मंजिल न पाएगा। किसी तूफान में फंस जाएगा साहिल न पाएगा। किसी सूरत कलंदर कौम से इसको जुदा कीजिए। पड़ा है कैद में दुनिया की अब इसको रिहा कीजिए। इसे अब मारुफत की राह का राही बनाना है। तरीकत के पिलाकर जाम नूरे हक दिखाना है। काफले के साथ ये मंजिल ना पाएगा, किसी तूफान में फंस जाएगा, साहिल ना पाएगा। और फिर आपने क्या किया, ये इस बंद में आप समाज फरमा रहे हैं, सुनिएगा।
गरज जब काफले ने ली इजाजत आगे जाने की तो हजरत ने इजाजत काफले को बाखुशी दे दी। गया जब काफले वो काफुला सब मुंतशर हर एक हुआ तन्हा। परेशान होके फखरुद्दीन फिर मुल्तान जा पहुंचे। बहाउद्दीन मुल्तानी की
माया। कलंदर लोगों का दिल से असर सब दूर फरमाया। दिखाया रास्ता हजरत ने उनको सर बुलंदी का, किया इजहार फखरुद्दीन ने एहसान मंदी का। कहा बैत को तो हजरत ने बैत उनको फरमाया। जो पाया था बुजुर्गों से मरहमत उनको फरमाया। रहे खिदमत में फखरुद्दीन कुछ दिन अपने मुर्शिद की, तो अपनी बेटी से मुर्शिद ने उनकी शादी भी कर दी। मगर कुछ अरसा ही गुजरा था बीवी मर गई उनकी। इजाजत फिर वतन जाने की मुर्शिद ने उन्हें दे दी। वो सैयद नेमतुल्ला के यहाँ हमदान में पहुंचे, किया कुछ इल्म हासिल और कुछ दिन तक वहीं ठहरे। एक सैयद की हमशीरा जमाला नाम था उनका। वो हाफिज थी कलामुल्लाह की था चांद सा चेहरा। बहाउद्दीन मुल्तानी ने आपके वालिद हजरत फखरुद्दीन इराकी को मुरीद भी किया और उसके बाद अपनी बेटी के साथ आपका निकाह भी कर दिया, लेकिन कुछ अरसे के बाद ही वो इंतकाल फरमा गईं। उसके बाद आप हमदान में सैयद नेमतुल्ला के यहाँ आ गए और वहाँ कुछ इल्म हासिल करने के बाद जब सैयद नेमतुल्ला हमदानी ने आप में कुछ खास बातें देखी, तो अपनी एक बहन जिनका नाम जमाला था, जो हाफिज़े कुरान भी थी, उनको आपके निकाह में ज़ौजियत में पहुंचवा दिया। उसके बाद फिर क्या होता है, समाप्त कीजिए आगे।
उन्हीं से एक पिसर पैदा हुआ जो खूबसूरत था, निजामुद्दीन उनका नाम रखा, खुश हुए बाबा। बड़े होकर वो हिंदुस्तान में आए तिजारत को, पसंद आया उन्हें एक शहर पानीपत सुकूनत को। शहंशाह उस घड़ी दिल्ली का कुतुबुद्दीन ऐबक था, निजामुद्दीन को रहते हुए जब वक्त कुछ गुजरा, तो फिर माँ बाप भी आकर यहाँ रहने लगे खुशतर। हुए पैदा कलंदर बू अली शाह, खुश हुआ सब घर। उस वक्त
دہلی پر قطب الدین ایبک کی حکومت تھی اور حضرت ابو علی شاہ قلندر کے بڑے بھائی نظام الدین جو تجارت کے لیے ہندوستان آئے تھے، آپ نے کچھ عرصے کے بعد اپنے ماں باپ کو بھی بلا لیا اور پھر یہیں ہندوستان میں ہی حضرت ابو علی شاہ قلندر کی پیدائش ہوتی ہے، اور پیدائش کے بعد کیا ہوتا ہے سماعت کیجیے گا۔
وہ پیدا ہوتے ہی رونے لگے اور چپ نہیں پائے، ہوئے جب تین دن روتے مسلسل باپ گھبرائے، جو نکلے گھر سے باہر تو قلندر مست ایک بولا، مبارک ہو تمہیں بیٹا میں اس کو دیکھنے آیا، وہ تھے درویش اور پہنے ہوئے چمڑے کے کپڑے تھے، بلا کر ان کو فخر الدین اپنے گھر میں لے آئے، بتائی ان کو فخر الدین نے ساری پریشانی، تو اس درویش نے بچے کی چومی پہلے پیشانی، پھر آیت پاک پڑھ کر پھونکی بچے پر قلندر نے، ہوا خاموش بچہ چین پایا ان کے سب گھر نے، کہا درویش نے فرزند ہوگا سب کو یہ پیارا، عجائب اور غرائب کا ملے گا اس کو نظارہ،
بعد تین دن تک آپ روتے رہے۔ ایک دن ایک درویش چمڑے کے کپڑے پہنے ہوئے آئے، فخر الدین جو آپ کے والد ہیں ان کو بلا کر کہا کہ ہم بچے کو دیکھیں گے، تمہیں بیٹا جو ہوا ہے اس کو دکھائیے۔ تو پھر جب فخر الدین آپ کے والد نے ان سے ساری پریشانی بتائی گئی تو تین دن سے چپ ہی نہیں رہے ہیں، اس درویش نے بچے کی پیشانی چوم کر اور کچھ آیت پڑھ کر بھوکی تو قلندر صاحب چپ ہو جاتے ہیں، کہا درویش نے فرزند ہوگا سب کو یہ پیارا، عجائب اور غرائب کا ملے گا اس کو نظارہ، اور اس کے بعد ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ماں کا دودھ پیا، اور آگے پھر کیا ہوتا ہے سماعت فرمائیے۔
پیا پھر دودھ بھی، بچے نے راحت بھی ملی اس کو، مبارک 606 ہجری تھی پڑھ کر واقعہ دیکھو، ملی گویائی تو تعلیم وہ کرنے لگے حاصل، وہ عربی فارسی اردو میں پڑھ کر ہو گئے کامل، ہوئی جب عمر 16 سال کی تبلیغ کی जारी ताबुन गैब से देती थी उनको रहमत बारी वो मुद्दत तक फिका इल्मे हदीसे पाक का सबको सबक देते रहे फैलाया अपने पाक मजहब को उलूमे बातनी से हो गए सैराब तो आए रहे वो शहर दिल्ली में कलंदर मस्त कहलाए यही था शगल उनका दीन की तालीम देते थे कोई कुछ नजर देता था तो वो हरगिज ना लेते थे कलंदर बू अली शाह शान से दिल्ली में रहते थे तरीकत मारुफत की राह में कुछ दुख भी सहते थे छुपा कर खुद को रखते थे जमाने की निगाहों से मगर दबते न थे वो हाकिमों से बादशाहों से नसीहत करते थे और बेदरीग इस्लाह करते थे वो बातिल को मिटाते हक की राहों से गुजरते थे हसद भी करते थे कुछ लोग उनको आजमाते थे मगर फिर वो जलीलो पार होते मुंह की खाते थे हिकायत एक ताजुब खेज है उनकी वो सुन लीजिए
हिकायत एक ताजुब खेज है उनकी वो सुन लीजिए हिकायत एक ताजुब खेज है उनकी वो सुन लीजिए
अकीदत उनसे रख के रहमतों के फूल चुन लीजिए
आपके सामने पेश कर रहा हूं बगौर समाज फरमाइए ये बादशाह का किस्सा है
सुना एक खूबसूरत मैजबी लड़की है दोशीजा उसी से बादशाह ने अक्द करके महल में रखा मगर जब महल में उस मैजबी से मिलने जाता था तो उसको हैज की हालत में पाकर लौट आता था
बादशाह ने खूबसूरत लड़की से अपना निकाह किया, लेकिन जब बादशाह उस लड़की से मिलने जाया करता था और हम बिस्तरी का इरादा किया करता था तो उसको हैज की हालत में यानी खून बहता हुआ पाता था और लौट आता था। लेकिन जब उसने ये मसला आलिमों से पूछा तो आलिम भी क्या कहते हैं उसके बाद किस तरह इस मसले का हल होता है, समाप्त कीजिएगा।
बहुत दिन हो गए तो आलिमों से मसला पूछा, नजूमी आलिमों से राज जब ये खुल नहीं पाया। कहा सब आलिमों से राज ये कल तक ना बतलाया, है जितने आलिमों फाजिल सभी को कत्ल कर दूंगा। कलंदर हूँ अली शाह अपने मकतब में पढ़ाते थे, अदम मौजूदगी में आपकी मजजू बुझा पहुंचे। मंगाई ब्यास तुलबा से कलंदर हूँ अली शाह की, हकीकत उसमें जो मलका की थी तहरीर फरमा दी। कहा तलबा से तुम उस्ताद को अपने बता देना, जो कुछ लिखा है हमने ब्यास में इनको दिखा देना। कलंदर वू अली शाह आए तो तहरीर को देखा, बहुत खुश थे कि अब मिल जाएगा उलमा को छुटकारा। हुआ जब दूसरा दिन शाह के दरबार में पहुंचे, कहा ऐ शाह तुमने शादी की है जिस हसीना से, बनाया है जिसे मलका तुम्हारी अपनी बेटी है। बाईस तो कुदरत उसकी असमत को बचाती है।
करो तो गुनाह से पास आ जाओ गनीमत है,
करो तो गुनाह से पास आ जाओ गनीमत है, करो तो गुनाह से पास आ जाओ गनीमत है,
करो तो गुनाह से पास आ जाओ गनीमत है।
नहीं तो ये समझ लो तीनों दुनिया में हलाकत है,
कलंदर अपने मकतब में आते हैं और अपनी ब्यास में वो वाकया लिखा देखते हैं जो वो लिख गए थे लोग जो आपके मकतब में आए थे आपकी गैर मौजूदगी में। दूसरे दिन आप शाह के दरबार में पहुंचते हैं, कहा आए शाह तुमने जिस हसीना से शादी की है वो खुद तुम्हारी अपनी बेटी है, इसी बाइस परवरदिगार आलम उसकी असमत को बचा रहा है, करो तौबा गुनाह से बाज आ जाओ गनीमत है, नहीं तो ये समझ लो तीन दुनिया में हलाकत है। वो बादशाह सुनकर हैरान होता है और कहता है कि क्या सबूत है आपके पास इसका, तो हजरत अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह इस तरह उसको समझाते हैं, समाप्त फरमाइए।
हुई हैरत ये सुनकर बादशाह को तैश भी आया, कहा ये क्या सबूत इसका तुम्हें किस बतलाया। कलंदर वू अली शाह ने ये फरमाया,
बहुत पहले निकाली तुमने बेगम याद कर लीजिए। गई जंगल में वो फिर एक धोबी के यहाँ पहुंची, वहीं धोबी के घर मलका से ये पैदा हुई लड़की। हुई जब सात बरसें हो गई बीमार वो मलका, बताया राज मरते वक्त धोबी के लिए सारा। बिलाखिर आपकी बेगम ने तोड़ा दम अदम पहुंची, उसी धोबी के घर वो परवरिश होती रही लड़की। जवां जब हो गई तो उसकी शोहरत आप तक पहुंची, के उसके हुस्न की शोहरत से नियत आपकी बहकी। जबरदस्ती उसे फिर आपने महलों में बुलवाया, बनाया उसको मलका और उससे वसल भी चाहा। नहीं मंजूर कुदरत को के ईमा आपका जाए, किसी बाईस तो बीमारी के मंदर सामने आए। बुला कर पूछ लो धोबी से ये बिल्कुल हकीकत है, नहीं इसमें जरा भी शक, ये सब सच्ची हिकायत है। हुआ साबित के सच है वू अली शाहनी जो फरमाया, हुआ नादिम शहनशाह और किए पर अपने पछताया। बादशाह अपनी खता पर नादिम होता है और उसके बाद जब वू अली शाह कलंदर बादशाह के दरबार से वापस आए तो फिर क्या असर हुआ, समाज फरमाए।
कलंदर वू अली शाह लौट कर दरबार से आए, न जाने बात क्या सोची के अश्क आंखों से बरसाए। तब खाना जो था अपना उसे बर्बाद कर डाला, जुनू ने इश्क़े सादिक ने बनाया उनको मतवाला। चले घर से तलाशे यार में सब छाने वीराने, लगन सच्ची थी उनको मिल गए अल्लाह के दीवाने। कहा मजजूब से बैत करो बस ये तमन्ना है, तुम्हारी चाह में मैंने जमाने भर को छोड़ा है। कहा मजजूब ने मुझको नहीं हक क्या ये कहते हो, मगर हाँ अपने मुर्शिद से मिला
रस्ते हैदर में नजर आया उन्हें जलवा खुदा का रुए अनवर में पिलाया जाम एक मौला अली ने उनको रूहानी निगाहे खास डाली कर दिया दिल उनका नूरानी हुए मजजूब हजरत अली गुम होश थे सारे नजर आने लगे कुछ और ही बात इनके नजारे वो जब होते थे इस्तग़राक के आलम में रोते थे कभी हंसते कभी खामोशी के आलम में होते थे मुबारक खास जो खादिम था खाना उससे लेते थे कभी जब पूछता खादिम जवाब उसको ये देते थे
कहीं अल्लाह खाना खाता है ये खाना ले जाओ
अल्लाह खाना खाता है ये खाना ले जाओ कहीं अल्लाह खाना खाता है ये खाना ले जाओ
कहीं अल्लाह खाना खाता है ये खाना ले जाओ
जो हो मोहताज खाने उसे ये खाना खिलाओ
मोहताज खाने का उसे ये खाना खिलाओ मोहताज खाने का उसे ये खाना खिलाओ
देखिए इस तरीके से हजरत अली शाह कलंदर ने अपनी सारी किताबें फेंक दी और घर से तलाश यार में निकल पड़े एक मजसूब आपको मिलता है आप फरमाते हैं कि बैत करो वो कहता है कि नहीं ये क्या कह रहे हो हाँ मैं अपने पीर मुर्शिद से मिला देता हूँ और फिर उसने मजसूब ने आपका हाथ हजरत अली शेर खुदा यानी मौला अली के हाथ में दे दिया हजरत मौला अली शेर खुदा ने आपको जाम पिलाया और रूहानी जाम जब आपने पी लिया तो फिर एक निगाहें खास भी डाल दी अपना लुआबे दहन भी दिया और वहीं से आपको वो अली का खिताब मिलता है उसके बाद आपके खास खादिम थे मुबारक जिनका नाम था वही आपको खाना खिलाते थे तो कभी कभी आप कहते थे कि कहीं अल्लाह भी खाना खाता है ये खाना ले जाओ और जो मोहताज है खाने के उसे ये खाना खिला दो एक और भी करामत आपकी पेश कराऊँ समाप्त फरमाइए
मुबारक नाम का खादिम था हजरत अबू अली शाह का वो खिदमत करता था हजरत की हजरत को भी प्यारा था जरूरत जब कोई होती मुबारक को बुलाते थे मुबारक ही उन्हें खाना बनाते और खिलाते थे मुबारक जब नहीं होता तो लड़का काम करता था वो खिदमत करके अपनी जिंदगी पुरनूर करता था कहीं खादिम गया था काम से तो खाना जब मांगा तो उस खादिम का लड़का खाना देकर आपको आया निवाला एक बचा तो आपने लड़के से फरमाया कुएं में डाल दो इसको मगर लड़का नहीं समझा निवाला खुद ही उसने खा लिया तो ये असर पाया हुआ बीमार पहले फिर आदम को पूछ फरमाया। मुबारक घर पे जब आए तो मरने का सबब पूछा, छुपा के घर में लाशा रख लिया मरहूम लड़के का। कहा जब दूसरे दिन बू अली शाह ने केला खाना, मुबारक ने पिसर की लाश को खुद पीठ से बांधा। दिया जब हाथ से लड़के के खाना, बोले अच्छा ला। यकायक लड़का जिंदा हो गया, ये फजल था रब का। कर रहा हूं आपके मजार से कुछ दूर पर एक जगह बूढ़ा खेड़ा थी जो आज भी है, और वहां पर आप एक मर्तबा जब पहुंचे और खुदा की याद में मशगूल थे, पुराने पाक पढ़ रहे थे, तो एक बारात आई और फिर क्या हुआ सुने।
वहां एक बूढ़ा खेड़ा थी जगह, हजरत वहीं पहुंचे, खुदा की याद में मशगूल थे, पढ़ते थे। वहां बारात आई, शोर गुल करती जला लाया, रखा था पास एक प्याला, उसे एकदम किया उल्टा। हुई बारात गायब, कुछ पता उसका न चल पाया। दुल्हन और दूल्हा दोनों के घरों में शोर मातम था, परेशान हो के घर वाले किसी दुर्वेश तक पहुंचे। सुनाया वाकया बारात का, दुर्वेश ये बोले, यहां से दूर जंगल में कलंदर बू अली शाह हैं, इबादत करते हैं हर दम खुदा की, नेक बंदा है। अदब से जाके अपना हादसा उनसे बयां कीजिए। ये सुनते ही दुल्हन दूल्हा के घर वाले वहीं पहुंचे, कहा रो रो के हजरत गुम हुई बारात रस्ते से, बहुत ढूंढा न मिल पाई खुदारा, अब दुआ कीजिए। अलंदर ने कहा तुम तीन मन की न्यास दिलवाना, कहा मंजूर है दिल से हमें हजरत का फरमाना। कहा फिर अपनी आंखें बंद कर लो और फिर खोलो, खुदाए पाक की कुदरत का फिर तुम माजरा देखो।
Ah!
उल्टा कर दिया तो बारात गायब, और जब वही प्याला सीधा हो गया तो उसी तरीके से वो बारात फिर सामने आ जाती है। तभी से ये न्यास की मन्नत का एक दस्तूर जारी है। मुलाजा कीजिए आगे का वाकया।
तभी से न्यास की मन्नत का एक दस्तूर जारी है, मुराद उसको मिली है जिसने मन्नत दिल से मानी है। सुनो अब एक करामत और उनकी गुजरी वाली, दिया अल्लाह ताला ने उन्हें क्या मर्तबा आली। दही लेकर गई एक गुजरी, बोली दही ले लो, कहा हजरत ने कैसे बेचती हो तुम दही दे दो। वो बोली तुम दही बाबा हमारा लेना पाओगे, कहा हजरत ने अच्छा तो दही के दाम बतला दे। कहा उस गुजरी ने सोने का मैं एक टका लूंगी, दिया हजरत ने सोने का टका वो गुजरी खुश थी। ये फरमाया दही ले जा जरूरत अब नहीं इसकी, दुआ देती हुई वो गुजरी लेकर दही चल दी। इसी सूरत वो रोजा थी टका मिलता था सोने का, बहुत दिन हो गए तो उसका शौहर एक दिन बोला, कहो हजरत से दौलत आपने दी शुक्रिया इसका, नहीं औलाद हम पे आप एक दे दीजिए बेटा। गई उसने कहा हजरत से हमको चाहिए बेटा, कहा हजरत ने जो औलाद चाहे सबको ले आना। गई फिर गुजरी घर से बहुत सी औरतें लेकर, कहा हजरत ने अपने मुंह से उगला पान इक दे कर।
जरूरत हो जिसे औलाद की वो पान ये खा ले,
हो जिसे औलाद की वो पान ये खा ले, हो जिसे औलाद की वो पान ये खा ले।
जरूरत हो जिसे औलाद की वो पान ये खा ले।
मिलेगा चांद बेटा उसे अल्लाह की रहमत से,
मिलेगा चांद सा बेटा उसे अल्लाह की रहमत से, मिलेगा चांद सा बेटा उसे अल्लाह की रहमत से।
औलाद चाहिए बेटा चाहिए, आप फरमाते हैं जो बे औलाद हैं तू उन सबको बुला ला। और जब वो सब आई तो आपने अपने मुंह से पान खाकर उगला हुआ पान देकर कहा कि जो भी इसको खा लेगा उसे अल्लाह की रहमत से चांद सा बेटा आता होगा। तो वो जितनी औरतें गुजरी के साथ आई थी उन्होंने थोड़ा थोड़ा खा लिया, और उसके बाद क्या होता है सुने।
वो जितनी औरतें थी थोड़ा थोड़ा खा लिया सबने, मगर खाया नहीं इतने दबाया जाके पत्थर से। गई फिर अपने अपने घर, हुए नौ माह जब हुए, हुआ हर एक के लड़का मगन थे लोग सब घर के। मगर जिसने न खाई वो गिलोरी रह गई तकती, वो पछताई के मैं भी काश इस पीड़े को खा लेती। गई सब औरतें फिर दो महीने बाद बच्चे ले, दिखाया जाके हजरत को सभी बच्चों को हसरत से। नहीं खाया था जिसने पान वो भी साधु ने पहुंची, कलंदर तू अली शाह को सलामी सबने जाके दी। कहा के आपके सदके खुशी के झूले झूलेंगे, कभी हम जिंदगी में आपका एहसान ना भूलेंगे। कहा हजरत ने उस औरत से जो बे बच्चे वाली थी, तू क्यों गमगीन है वो रो के बोली गोद है खाली। बड़ी गलती हुई मुझसे गिलोरी वो नहीं खाई, मेरे आका मुराद अपनी किसी बाइस नहीं पाई। कहा हजरत ने जिस पत्थर से वो पीड़ा दबाया है वहीं जा देख तेरा चांद सा फरजंद लेटा है। गई वो जाके देखा खूबसूरत बच्चा लेटा है, दिखाया लाके हजरत को कहा क्या शाने आका है।